अज्ञेय और मुक्तिबोध, असाध्य पीड़ा अंधेरे में। समकालीन साहित्यिक परिदृश्य पर बहुत बार अज्ञेय और मुक्तिबोध को एक दूसरे के प्रतिरोधी चरित्र के रूप में दिखाने की कोशिश की जाती है। तब कई दशकों पहले प्रसाद प्रेमचंद की जोड़ी की स्थिति याद आती है। इंदौर अधिवेशन वाले भाषण काव्य में अभिभंजनावाद के अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने समकालीन इन दोनों लेखकों की सापेक्ष समीक्षा करते हैं। यह भाषण अभिभंजनावाद संबंधी विवेचन के लिए कुछ इतना ख्यात हो गया कि उसके साथ ही दी गई वक्ता लेखक की बहुत सी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ विद्वानों की आँख से सहज ओझल हो जाती हैं। समकालीन साहित्य की गतिविधि पर विचार करते हुए जो ऐसे अभिभाषणों का सामान्यतः एक मुख्य अंश होता है, आचार्य शुक्ल लिखते हैं संदर्भ नाटक का है। सिंगल नोट कामा, यह देखकर मुझे अत्यंत आनंद होता है कि प्रसाद जी के नाटकों में इस प्रकार के विकास के पूरे लक्षण मिलते हैं। मेरे देखने में अच्छे सामाजिक नाटकों का अभाव अभी बना है। इसके लिए प्रसाद जी से न कहूँगा। जिस ऐतिहासिक क्षेत्र को उन्होंने लिया है उसी के भीतर उन्हें अपनी प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास करना चाहिए। आगे उपन्यासों के विकास का परिचय देते हुए आचार्य की टिप्पणी है। सिंगल नोटेड कामा, मेरे देखने में उत्कृष्ट कोटि के ऐतिहासिक उपन्यासों का अभाव ज्यों का त्यों बना है। यदि जयशंकर प्रसाद जी इस ओर भी ध्यान दे तो इस अभाव की पूर्ति बहुत अच्छी तरह हो सकती है। मैं तो अपनी ओर से यही कहूँगा कि सामाजिक उपन्यास का क्षेत्र तो प्रेमचंद जी ऐसे लोगों के लिए छोड़ दें जो ऐतिहासिक नाटकों की रचना को गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना कहते हैं और स्वयं इतिहास के प्राचीन क्षेत्र में स्वच्छंद कीड़ा करने वाली अपनी प्रतिभा को ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर प्रवृत्त करें। नोटेड कामा बंद। यह संभव है कि आचार्य के अनुरोध का पालन करने के लिए उपन्यासकार ने इरावती की रचना आरम्भ की जो बाद में अधूरी रह गई। यहाँ रामचंद्र शुक्ल अपने युग की दोनों मूर्धन्य प्रतिभाओं के वैशिष्ट की पहचान करते हैं। समय है 1935 ईस्वी। कामायनी, गोदान दोनों अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं। एक सजग समीक्षक के रूप में आचार्य शुक्ल अपने समकालीन दोनों लेखकों की रचना संभावना की परख कर रहे हैं। आगे का इतिहास जिस परख को पूरी तरह सही प्रमाणित करता है, प्रसाद इतिहास और संस्कृति के व्याख्याता, प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ के चितेरे। अपने युग के पाठकों और आलोचकों से यही दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह मैं करूँगा। यह राजनैतिक चुनाव का क्षेत्र नहीं कि हमारे पास एक मत है और उसे हम सिर्फ एक प्रतिद्वंद्वी को दे सकते हैं। यह साहित्य का विराट प्रवाह है जहाँ अनेक धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं और हम सभी का आस्वाद लेते चलते हैं। विविध नदियों में जल एक है पर अलग अलग खनिजों के कारण उनके स्वाद और गुण में अंतर होना है और होना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में अज्ञेय और मुक्तिबोध के वैशिष्ट को समझने का यत्न अधिक संगत हो सकता है। अंधेरे में और असाध्य पीड़ा नई कविता की इन दोनों लंबी कविताओं में रचना शक्ति की खोज का आख्यान है। दोनों अपने अपने रचनाकारों की शेष रचनाएं कही जा सकती हैं। समकालीन आलोचना में इसी रूप में उनकी पहचान भी बनी है। इस दृष्टि से दोनों कविताओं को समझने के क्रम में हम उनके रचनाकार के वैशिष्ट्य और अलगाव दोनों को काफ़ी दूर तक समझ सकते हैं। एक में समूचा बिंब विधान लिया गया है कविता और कवि जीवन से, दूसरे में संगीत से। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है समाज को उत्थान पतन और आंदोलनों के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का विज्ञान और उनकी बनावट की पहचान। रचना कैसे बाहर से अंदर जाती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। कविता का समापन अंश हर ईमानदार कवि का अंतिम वक्तव्य और साक्ष्य हो सकता है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। इसीलिए मैं हर गली पे और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र। वह हर एक आत्मा का इतिहास, हर एक देश व राजनैतिक परिस्थिति, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत प्रणति। खोजता हूँ पठार, पहाड़, समंदर, जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार आत्मसंभवा। अंतर, ऐसा कहा गया दोनों कविताओं के बिंब विधान को लेकर उभरता है। असाध्य वीड़ा में केंद्रीय बिंब संगीत के क्षेत्र है का है, जहाँ अनुभूति के रचाव पर विशेष बल है। अंधेरे में का केंद्रीय बिंब लेखन कार्य से जुड़ा है। मौत की सजा का विधान भी इसी पर आधारित है। किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों में बध गई, किसी खड़ी पाई के सूली पर मैं टांग दिया गया, किसी शून्य बिंदु के अधियारे खड्डे में गिरा दिया गया मैं अचेतन स्थिति में। असाध्य वीड़ा के अंधेरे में संगीतकार सृजन प्रक्रिया अनुभूति के तई अपने को समर्पित करने में है, जबकि अंधेरे में ये नायक के लेखन कार्य में वैचारिकता के विविध द्वंद्व हैं। अनुभूति और रूपाकार का द्वैत हासिल करने में संगीत को आदर्श माना गया है, और यह भी कहा गया है कि हर कला की साधना अंततः संगीत की स्थिति प्राप्त कर लेने में है। पश्चिम में यूनानी ट्रेजेडी मानवीय सृजनात्मकता की श्रेष्ठतम उपलब्धि मानी गई है। इस दृष्टि से शास्त्रीय हिंदुस्तानी कंठ संगीत भारतीय सृजनात्मकता की श्रेष्ठतम उपलब्धि कही जा सकती है। गिनती के सात सुरों के विस्तार और प्रस्तार से सृष्टि की संपूर्ण अनुभूति समाई हुई है, पर वैचारिकता का चित्र लेखन का है। असाध्य वीड़ा और अंधेरे में सृजनात्मकता के इन स्तरों को बखूबी रूपायित करते हैं। एक का प्रभाव उसके संधित होने में है, दूसरे का उसके फैलाव में। अपने विधान में ये दोनों कविताएं परस्पर पूरक ढंग से एक बढ़िया युग उपस्थित करती हैं। मानव जीवन में अभिशाप और नियति की टकराहट सोफोक्लीज की यूनानी ट्रेजेडी राजा ओडिपस जैसी बड़ी रचनाओं का उपजीव्य होता है। इस क्रम में आधुनिक काव्य कामायनी को लिया जा सकता है, जो मुक्तिबोध की रचनात्मकता के लिए उत्तेजन और चुनौती दोनों रही है। उसका अपने ढंग से विश्लेषण करते हुए कवि ने एक सांगोपांग अध्ययन प्रस्तुत किया, कामायनी एक पुनर्विचार। इस एक पुस्तक पर केंद्रित जैसी व्यवस्थित समीक्षा हिंदी में कठिनाई से मिलेंगी। कामायनी में काम द्वारा मनु को श्राप दिया जाता है और यूँ मानवता अपने जन्म के पूर्व ही अभिशप्त हो जाती है, एक अभिप्राय जो सामी परंपरा के करीब है। बाइबिल में ज्ञान का वर्जित फल चखने के अपराध में आदम और ईव को स्वर्ग के बगीचे से नीचे गिरा दिया जाता है, और इस आदिम अपराध बोध से मानवता को अंत तक आक्रांत रहना है। श्राप का अभिप्राय भारतीय परंपरा में भी है। पुराणों का शायद ऐसा कोई ऋषि हो जो श्राप न देता हो, पर यहाँ श्राप है तो उसकी मुक्ति का उपाय भी है। शायद ही ऐसा कोई श्राप हो जिसे देने के बाद स्त्री ने ऋषि ने उससे मुक्ति का उपाय भी न बता दिया हो। प्रसाद इन दोनों अभिप्रायों का सामंजस्य करते हैं। ईड़ा सर्ग में काम के लंबे श्राप का प्रसंग है, और फिर अंत में मनु की संकल्प शक्ति का उदय होता है जो श्राप को अपने लिए वरदान के रूप में बदलती है। मनु लिखते हैं, लिख दिया आज उसने भविष्य यातना चलेगी अंतहीन, अब तो अवशिष्ट उपाय भी न, और फिर नेति जाल से मुक्तिदान का उपाय सोचते हैं। उनकी नई सहायक ईड़ा उद्बोधन करती है, अपनी दुर्बलता बल संभाल, गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, मत कर प्रसार निज पैर चल, चलने को जिसको रहे झोंक, उसको अब कोई सके रोक। यो मनुष्य अपनी दुर्बलता को ही बल के रूप में विकसित करता है। काम के श्राप का सबसे कठोर अंग है कि अभी तक देव सृष्टि तो अजर अमर थी, परंतु अब मानवीय सृष्टि मरणशील होगी। यह मृत्यु की चुनौती एक और मनुष्य में प्रेम करने की क्षमता जगाती है, और दूसरी ओर उसमें सृजनात्मक शक्ति विकसित करती है। बुनियादी तौर पर ये दोनों प्रक्रियाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य मृत्यु पर विजयी होता है अपने प्रेम से, और अपनी रचना में जो स्थूल स्तर पर उसकी संतान है, और सूक्ष्म स्तर पर दर्शन विज्ञान साहित्य तथा कलाएँ हैं। यों अभिशाप को काम में नियति के रूप में बदल दिया जाना पश्चिमी परंपरा से अलग कामायनी के वस्तु का एक प्रधान तत्व है। मनुष्य अपनी मरणशीलता को सृजनात्मक शक्ति के प्रेरक तत्व के रूप में स्वीकार करता है। जो अभिशाप था वह अब नियति है, भाग्य के अर्थ में नहीं, एक अज्ञात विराट लक्ष्य के रूप में। अंधेरे में के चरित नायक कवि की कोशिश कविता में आरंभतः वर्णित मौत की सजा को अंततः परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा के रूप में पहचानना है। अभिशाप को नैतिक रूप में बदल लेना है। यहाँ पहुँचकर रचनात्मकता की खोज पूरी होती है और फिर आरंभ भी हो जाती है। इसीलिए मैं हर गली पे और हर सड़क पर झांक झांक देखता हूँ हर एक चेहरा। कामायनी में मनु की तलाश आनंद सर के अंत में अपनी स्वाभाविक निष्पत्ति तक पहुँचती है, असाध्य वीड़ा के केश कम्बली की भी। पर अंधेरे में का अंत खुला हुआ है। जहाँ कविता का अंत होता है वहाँ कवि की तलाश फिर शुरू हो जाती है। खोजता हूँ पठार पहाड़ समंदर जहाँ मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्मसंभवा। रचना प्रक्रिया की बड़ी सटीक पहचान अंधेरे में हुई है। पहले भूमि की सतह के नीचे बिखरे हुए रत्नों की राशि चरित नायक देखता है और पहचानता है। दीप्ति में वलयित रत्न वे नहीं है, अनुभव वेदना विवेक निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। यह सामाजिक अवचेतन से कवि की गहरे जुड़ी चेतना है। दूसरी ओर गांधी उसे संदेश देते हैं, जनता के गुणों से ही संभव भावी का उद्भव। यह भविष्य की चेतना का आख्यान है। कविता के समापन अंश में रचना शक्ति का सामान्य जनजीवन में लोगों की भीड़ में विलय हो जाता है। एकाएक वह व्यक्ति आँखों के सामने गलियों में सड़कों पर लोगों की भीड़ में चला जा रहा है। वही जन जिसे मैंने देखा था गुहा में, धड़कता है दिल की पुकारने को खुलता है मुंह की अकस्मात, वह दिखा और फिर खो गया किसी जन यूथ में, उठू ही बाँह या उठी रह गई। अंदर और बाहर गुहा और भीड़ की अंतर प्रक्रिया में रचना शक्ति के पहचान का उपक्रम यों चलता रहता है। कवि की अनखोजी रही परम अभिव्यक्ति जिसे कवि गुरु स्थानीय मानता है, मैं उसका शिष्य हूँ, वह मेरी गुरु है। शक्ति का यह विराट रूप है जो गुहा से निकलकर भीड़ में मिल जाता है और जहाँ से कवि की खोज शुरू होती है, खोजता हूँ पठार पहाड़ समुंदर। दोनों कविताओं के वस्तु और विधान ने उसके शीर्षक विसर्जन प्रक्रिया के अन्वेषण को सांकेतिक करते हैं। अंधेरे में सृजन का आवश्यक परिवेश और संदर्भ है। असाध्य वीड़ा को साधने के क्रम में कलाकार भी अपने को सघन निबिड़ में उतारता है। अंदर और बाहर की अंतर प्रक्रिया इन दोनों लंबी कविताओं में रचनात्मकता का उत्स है। असाध्य वीड़ा के लंबे खंड में साक्षात्कार प्रक्रिया के जो विविध रूप अंकित हुए हैं, अन्न की सौंधी खुदबुद से लेकर प्रलय का डमरू नाद तक, उन्हें मुक्तिबोध हर गली में हर सड़क पर हर एक चेहरा झांक झांक देखते हैं कि कहीं वह परम अभिव्यक्ति अनिवार्य मिल जाए। असाध्य वीड़ा में संगीत के साक्षात्कार संबंधी चित्रों का वैविध्य पहले अंकित कलाकार के अपने जीवनानुभव के वैविध्य से तुलनीय है। हाँ, मुझे स्मरण है, बदली कौंद पंक्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खगशावक की चीहू शिलाओं के दुलराते पन झरनों के, द्रुत लहरीले जल का कल निनाद कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सव ढोलक की थाप। पर अंदर और बाहर की टकराहट में गुणात्मक महत्व दोनों कविताओं में अंदर का ही ठहरता है। मुक्तिबोध कविता के अंतिम पंक्ति में अपनी परम अभिव्यक्ति अनिवार्य को समाज की हर टकराहट के बाद और बावजूद आत्मसंभवा कहते हैं। इस अंतिम अंश की तुलना असाध्य वीड़ा के समापन अंश से करने योग्य है, जहाँ कलाकार अपनी सृजन प्रक्रिया का रहस्य समझाता है। श्री नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीड़ा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था, सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी। महाशून्य वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। मुक्तिबोध की परम अभिव्यक्ति जग में लगातार घूमती हुई आत्मसंभवा है। अज्ञेय के लिए वही सब कुछ की तत्ता अविभाज्य और अनाप्त हो जाती है। जो अनाप्त है वही आत्मसंभवा हो सकती है। और यों दोनों कविताओं में वर्णित सृजन प्रक्रिया संपन्न एक बिंदु पर होती है। उठान दोनों की अलग अलग है पर विस्तार और निष्पत्ति में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। सृजन प्रक्रिया को वस्तु रूप में लेकर चलने वाली ये कविताएं अनायास दोनों कवियों का सम्मिलित काव्यशास्त्र बन जाती है। नई कविता और अज्ञेय। नई कविता पद अब एक व्यापकतर अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसमें कविता ही नहीं वरन उसे पूरे रचना युग की प्रवृत्तियां व्यंजित होती हैं, जिन्हें समष्टि रूप में नवलेखन भी कहा गया है। इन रचनाओं की क्षमता, रचनाकारों की क्षमता किसी एक माध्यम में नहीं अट सकी है। कविता, उपन्यास, नाटक, एक खास अर्थ में कहानी, गद्य रूप, साहित्य चिंतन, इन सभी माध्यमों में अभिव्यक्ति की नई तलाश जारी रही। कविता इन सबके केंद्र में है तो इसलिए कि कविता की भाषा सबसे अधिक सृजनात्मक होती है और इसी माने में कविता सबसे अधिक साहित्य है। नई कविता में मनुष्य और उसके समग्र अनुभव को पकड़ने का यत्न हुआ है। यों मनुष्य को उसकी संपूर्णता में देखने और समझने की प्रक्रिया हर नए वैचारिक और रचना आंदोलन ने की है। 15वीं शती के यूरोपीय पुनर्जागरण से लेकर 20वीं शती की हिंदी छायावादी कविता तक पुनर्जागरण का प्रधान बल समग्र मनुष्य की धारणा पर था। आधुनिक हिंदी कवि भी कहता है कि जाति, वर्ण, संस्कृति, समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चाल कर निकाला जाए। पर नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। यह स्मरणीय है कि हिंदी साहित्य के समूचे इतिहास में नई कविता युग का साहित्य पहली बार स्वाधीन और प्रजातांत्रिक देश में रचा गया है। यहाँ केवल वीर और श्रृंगार जैसे रसों में जीवन सीमित नहीं रह गया, वरन छोटे से छोटे समझे जाने वाले अनुभव कणों की प्रासंगिकता पहचानी गई है। अनुभूति का जनतांत्रिकरण नई कविता की मौलिक विशेषता कही जा सकती है। संस्कृत साहित्य में धीरोदात्त, विशिष्ट व्यक्तित्व, जाति और कर्म दोनों दृष्टियों से रचना के केंद्र में था। महाकाव्य का नायक होने के लिए यह बुनियादी शर्त थी। 19वीं-20वीं शती के भारतीय पुनर्जागरण ने सामान्य और इतिहास तिरस्कृत चरित्रों को विशिष्टता दी। मेघनाथ, कैकेयी, उर्मिला, कर्ण और एकलव्य को इस प्रक्रिया में महत्व मिला। आधुनिक साहित्य तक आते आते चक्र पूरा घूम जाता है। अब साधारण चरित्र के वैशिष्ट्य को नहीं, उसके साधारण जीवन को ही रेखांकित करने का प्रयत्न है। इसी को नई कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय ने कहा है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। सारा का सारा जीवन की विराटता को इन रचनाकारों ने आत्मीय बनाया है। मुक्तिमोद की पंक्तियां हैं, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता या अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, इसीलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ गर्वीली गरीबी का प्रयोग बरबस ध्यान खींचता है और भारतीय जिंदगी तथा समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति को उजागर करता है। नई कविता इस सारे के सारे जीवन और गर्वीली गरीबी का काव्य है। दुख, छंद, यहाँ तक कि भाषा के अपने लय के अलावा संगीतात्मक लय तक को छोड़कर वह कविता का अधिक से अधिक केंद्रीय और स्वायत्त रूप है। इस प्रसंग में अज्ञेय और नई कविता के पारस्परिक संबंध को समझना जरूरी है। वर्तमान अर्थ में नई कविता नामकरण एक रेडियो वार्ता में अज्ञेय का किया हुआ है, जिसका प्रकाशन नए पत्ते पत्रिका के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में हुआ और प्रयाग में नए लेखकों की गोष्ठी परिमल से भी अज्ञेय का निकट संबंध रहा है। सत्य यह है कि अज्ञेय और परिमल के निकट संबंधों ने मानव प्रयोगवाद से नई कविता का संक्रमण संभव बनाया। पर नई कविता के साथ अज्ञेय के संबंधों में कभी कभी तनाव भी आया है। यह जरूर है कि लेखक के मन में इस तनाव का अनुभव व्यक्तिगत अथवा व्यवहारिक स्तर पर न होकर रचनात्मक स्तर पर ही अधिक लगता है। इस प्रसंग में नए कवि को संबोधित अज्ञेय की कविता नए कवि के प्रति उल्लेखनीय है, जो पहले कल्पना में छपी और फिर बाद में अरियोग करुणा प्रभामय में संकलित हुई। वस्तु के धरातल पर इस कविता में नए कवि के प्रति व्यंग, विद्रूप और आक्रोश के व्यक्त हुई है। इसे और इस प्रकार के दो एक अन्य कविताओं को लेकर नए लेखकों में एक विक्षोभ और उत्तेजना का वातावरण फैला। प्रज्ञे इस विवाद में नहीं पड़े और वह असुखद प्रसंग समाप्त हो गया। नई कविता के संक्रमण और विकास को अज्ञेय ने संभव बनाया और उसे सहयोग दिया, पर बाद में उसकी चुनौती भी उन्होंने महसूस की। इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता को प्रेरणा और उत्तेजना मिली है। अज्ञेय की उत्तरकालीन रचनाओं में संस्कृत और अंग्रेजी से प्रेरित भाषा के अभिजात्य से जो विमुखता है, उसके पीछे किसी हद तक रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा और विपिन अग्रवाल जैसे नए कवियों का नैतिक समर्थन समझा जा सकता है। नई कविता की चुनौती से अज्ञेय को रचनात्मक बल मिला। यह दोनों ओर की प्रखर गतिशीलता और गहरी सृजनात्मकता का ही प्रमाण है।